29, 11, 17 आते क्लास। बल कोई आते हैं, बहुत अच्छा ओपिनियन लिख करके जाते हैं, ये तो बहुत अच्छा है, तो भी कई कहेंगे हम इससे टैली नहीं करते, क्योंकि शास्त्रों को बहुत मानते हैं और तुम लोग शास्त्रों को नहीं मानते हो। शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के, तो एक ही बाप है जिसको नाली स्कूल कहा जाता है। भक्ति मार्ग में तब कोई को नाली स्कूल जानी जानना आज नहीं कहा जा सकता, और मनुष्य तो जानी जानना हार हो ही नहीं सकता। बाप के लिए कहते हैं जानी जानना हार, लेकिन जानी जानना हार वो क्या है, कौन है, ये नहीं जानते, समझते नहीं। बाबा बतलाते हैं मैं क्या जानता हूं। जान जानना हार अर्थात जो सभी कुछ जानते हैं, जो सभी कुछ जानते हैं वो ही सभी कुछ समझाते हैं। सची का चक्र कैसे फिरता है सारा ज्ञान बताते हैं। सच के आदि मध्यंत की नाली प्रश्न को तो होती नहीं है, वो तो जन्म मरण के चक्र में आता है, गर्भ से जन्म लेता है, तो प्रश्न को भगवान कहना वो हो गया भक्ति मार्ग। भक्त तो सभी हैं, क्योंकि सभी शास्त्रों और गुरुओं को मानने वाले हैं। वो शास्त्र और गुरु कभी भी सदगति नहीं दे सकते। तुम तो बच्चों को मालूम हो गया है इस झाड़ के कितने पत्ते हैं, पत्ते वृद्धि को पाते रहते हैं, आखिरी इस झाड़ का अंत होता है, जानते हो कि झाड़ कैसे जड़ीभूत अवस्था को पाता है। और वो भी तुम जानते हो कि इसका फाउंडेशन तो है ही नहीं, ये चक्र फिरता रहता है। इस मनुष्य शक्ति की आय को भी वो लोग नहीं जानते, बल चौपड़ी में स्वास्थ्य का भी निकालते हैं, लिखते हैं गणेश आय नमः, हर एक चौपड़ी में निकालते हैं। अभी देखो उनकी बुद्धि में और तुम्हारी बुद्धि में कितना फर्क है। वो निकालते हैं गणेश, पांव एक तरफ जाते हैं, या दूसरी तरफ जाती है, सूंड दूसरी तरफ जाती है। अब है तो वो आसुरी मत, तुम्हारी है ईश्वरीय, तुम समझा सकते हो कि हम श्रीमत के अनुसार राजयोग सिखाते हैं। श्रीमत से श्रेष्ठ राजाओं का राजा बनाते हैं। और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत मिलती ही है संगम युग पर। तो तुम अभी संगम युगी ठहरे, संगम पर फिर प्रश्न कहां से आवेगा? प्रश्न को दिखाते हैं सोलह कला संपूर्ण। कृष्ण जयंती और शिव जयंती एक साथ दिखाई देती है। अभी तुम तो जानते हो कि कृष्ण जयंती जरूर होनी है, कृष्ण जयंती कहेंगे वही नारायण जयंती। नारायण का और कोई समाचार नहीं देते हैं, बल कथा सत्यनारायण की सुनाते हैं, परंतु उसमें नारायण का कोई समाचार नहीं। अभी बाप कहते हैं मैं नई दुनिया स्थापन करने के लिए नई नॉलेज देता हूं, फिर भी ये दुनिया पुरानी तो जरूर होनी है। इस पुरानी दुनिया को नया बनाने वाला एक ही बाप ठहरा, और वो बाप की नॉलेज तुम्हारे पास है। इसको समझने के लिए आते तो बहुत हैं, और आकर के अच्छा अच्छा कह करके भी जाते हैं। बच्चे समझते हो हम जो सर्विस करते हैं वो कल पहले भी ऐसे करते थे और ऐसे ही उसकी रिजल्ट निकली थी, कल्प कल्पांतर ऐसे ही रिजल्ट निकलती रहती है। और आस्ते आस्ते वृद्धि को पाते जाते हो, मेहनत तो होती है। जिसने जिसने सुना वो प्रजा तो जरूर बनती है। संस्था वृद्धि को पाती जाएगी, बहुत वृद्धि को पाए जाएंगे तो सभी की आंखें खुल जाएंगी। बच्चे जानते हैं तार में भी समाचार गया है, तार भी छपेंगी और मैगजीन्स भी छपेंगी। तुम समझते हो हम वारियर्स हैं? दिल्ली पर घेराव डाल रहे हैं, क्योंकि जानते हो दिल्ली से ही विजय का आवाज निकलना है। तुम भी कोशिश करके दिल्ली के बड़ों बड़ों को हाथ करते हो, आधा कल्प विकारी रहे हैं, तो उनको निर्विकारी बनाया जाता है। परंतु ये कोई नई बात तो है नहीं, दुनिया के मनुष्य तो नहीं समझते हैं ये संगम युग है। तो बच्चों को भी माया संग युग बुलाई देती है। संगम युग के बाद स्वर्ग तो जरूर आवेगा, क्योंकि ये नरक और स्वर्ग का संगम है। तो तुम्हारे अंदर खुशी भी रहनी चाहिए कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं, परंतु माया वो खुशी नहीं रहने देती। संगम युग याद है तो बाप भी जरूर याद आवेगा। संगम युग माना ही बाप की याद। उस याद कोई माया भुलाई देती है, सारा दिन याद नहीं रहता। बाप के साथ साथ संगम युग भी याद नहीं रहता। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो, उसे भी भूल जाते हैं, तो संगम युग कैसे याद पड़ेगा। संगम युग और ही नई चीज है। बाप तो फिर भी पुरानी चीज है। 63 जन्म बाप को याद करते रहे, पूजा करते रहे, परंतु भक्ति मार्ग में कब संगम युग को याद किया जाता है क्या? नहीं। बच्चे जो सारा दिन म्यूजियम में सर्विस करते रहते हैं, उनको तो घड़ी घड़ी याद पक्की हो जाती है। सेंटर्स पर सर्विस का इतना चांस नहीं होता है, और म्यूजियम में तो सारा दिन चांस रहता है। वो हमारा बाप है, सुप्रीम टीचर है, गुरु है, ये याद भी नहीं ठहर सकती। अगर ये याद ठहर जाए तो अहो भाग्य। बच्चों को तो विश्व की बादशाही मिलती है, उसके लिए मेहनत है ही याद की। म्यूजियम में बच्चों की सबसे जास्ती उन्नति होती है। सर्विस करके फिर सर्विस का समाचार देते हैं, तो ऐसे बच्चों की फिर और ही जास्ती उन्नति होती है, क्योंकि बाप तो समाचार से भी खुश हो जाते हैं, अच्छा सर्विस उन बच्चे कितना अच्छा समाचार देते हैं, इनको शौक है सर्विस करने का। बाप को समाचार देते हैं, बाप भी रिस्पॉन्ड दे देती है। अच्छा अच्छा समाचार बच्चों को सुनाया जाता है, तार को भी 4-5 दिनों में करेक्ट करते आए। बाप को भी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा अच्छी रीति समझावे जो कुछ उनकी बुद्धि में बैठे। वो तो विश्व में शांति के लिए कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, अब उन सबको तो पता ही नहीं है कि शांति चीज क्या होती है। बाप तो बतलाते हैं कैसे नई दुनिया में एक राज्य स्थापन होता है, ये बात अच्छी रीति समझानी है। बहुत बहुत हड्डी रुचि से सर्विस करनी होती है, उनकी 11-68 की वाणी का दूसरा भी। ऐसे तो सर्विस भी होती है और साथ साथ डिस सर्विस भी होती है। क्योंकि महारथियों पर ही माया वार करती है, वार करती है तो डिससर्विस भी जरूर करती होंगी। सर्विस से जास्ती भी कहीं कहीं डिससर्विस कर देती है, वो भी अच्छे अच्छे महारथी अहंकार में आके डिससर्विस कर देती है। समाचार आता है पुराना महारथी है परंतु डिससर्विस कर दी। अगर सिर्फ सर्विस होती रहे तो कितनी वृद्धि हो जाए। माया डिससर्विस कराती है, इसलिए स्थापना में टाइम लगता है। गायन भी है, बेहद का बाप बेहद का वर्षा देगी। अच्छी अच्छी ब्राह्मणी भी बड़ी डिससर्विस करती है, फिर उस डिससर्विस को सर्विस में लाने में बड़ी तकलीफ होती है। अभी तुम बच्चों को तो निश्चय है कि स्थापना तो जरूर होनी है। सब शक्तिवान बाप आए हैं नई दुनिया की स्थापना करने के लिए, तो स्थापना का काम तो रुकने वाला नहीं। जो मनुष्य है वो ही इन बातों को समझ सकते हैं। मनन चिंतन मंथन करने के द्वारा समझ सकते हैं। देवताएं तो समझेंगे नहीं, जानवर बुद्धि है वो तो कैसे समझेंगे। तो बताते हैं कि जो नहीं समझ सकते के नहीं समझ सकते वो जानवर मिसल, और वो जानवर बुद्धि इतना उच्च पद पा भी नहीं सकते। ये भी ड्रामा में नूद है। आगे कहते थे ईश्वर ही करण करावनहार है, और ईश्वर ही सुख दुख देते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई सुख और दुख थोड़े ही देता हूं, ड्रामा प्लान अनुसार स्वतः ही होता है। हाँ, सबकी प्लानिंग के ऊपर बाप की प्लानिंग विजय पाती है। सबकी प्लानिंग मिट्टी में मिल जाएगी। ये सब रहेंगे ही नहीं, ये ड्रामा की भावी बड़ी विचित्र है। समझते भी है विनाश जल्दी होने का है, क्योंकि बाम साग कराने में बहुत खर्चा हो रहा है, इसलिए कोई कोई बनाते बनाते बंद भी कर देते हैं। परंतु फिर भी विनाश तो हो नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा समाचार है। क्या? कि विनाश तो हो नहीं है, वो डिससर्विस भी कर देते हैं। कहेंगे ड्रामा अनुसार डिससर्विस करते हैं, जरूर कुछ देरी है। कितने बच्चों को ड्रामा अनुसार माया इस ज्ञान में ठहरने नहीं देती है। नहीं तो सर्विस की बातें सुनकर के ही बहुत खुश होना चाहिए। फिर सर्व सुनने से कितना ख्याल आता है। ये लड़ाई का मैदान है, माया के साथ बॉक्सिंग होती रहती है, लाखों रुपया खर्च होता है। अब यहाँ तो खर्चे आदि की बात ही नहीं है, यहाँ तो सारा काम बुद्धि से लेना होता है। बाप आत्माओं को भी समझाते हैं, इनको भी समझाते हैं। जैसे बाप को नॉलेज मिली है, ये मनुष्य सृष्टि का बाप है ना, वैसे तुम बच्चों को भी मिलती है। अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है, वर्षा मिलता है ऊंच पद पाने का, फिर भी तुम नीचे तो उतरते हो। सुख मिलता है तब उनको याद किया जाता है, दुख पड़ता है तब सुख का टाइम याद आता है। फिर भी ये तो जानते हो नीचे तो उतरना पड़ता है, बात कितना सहज समझा। और अनेकानेक अनगिनत बार समझाया होगा, तो फिर बच्चों को इतना याद भी रहना चाहिए, विचार होता रहता है। ये आबू एक दिन बहुत जोर से भर जाएगा, ख्याल होता है नाम बहुत हो जाएगा। ये आबू दुनिया में सबसे बड़ा तीर्थ हो जाएगा, बड़े तीर्थ और छोटे तीर्थ की पहचान क्या है? छोटे तीर्थ में थोड़े लोगों का जाना आना होता है, और बड़े तीर्थ में ज्यादा लोगों का जाना आना होता है। अभी दुनिया के हिसाब से बड़े से बड़ा तीर्थ कौन सा है? है
नदी सागर में
कौन सा? जोर से बोलो।
नदी सागर का मेला,
नदी और सागर का मेला। उस मेले में तो हिंदू लोग ही इकट्ठे होते हैं, गंगा सागर के मेले में हिंदुओं की संख्या तो दुनिया में बहुत थोड़ी है। तो दुनिया में ऐसा स्थान कौन सा है जहां बड़े से बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं? है मुसलमानों का काबा, ज्यादा संख्या भी मुसलमानों की है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि दुनिया के हिंदुओं मुसलमानों सिखों ईसाइयों सभी धर्मों के लोगों की आंख कहां डूबेगी? आबू में डूबेगी। तो लेक की तरफ एक अच्छा प्लाट लेना चाहिए, जैसे हरिद्वार में ढेर जाकर के बैठते हैं। ऐसे यहां भी वेद के बाप के तट पर आकर बैठ जाएंगे। ये सबसे बड़ा तीर्थ हो जाएगा। और तुम बहुत अच्छा बना देंगे। गड़ी गड़ी आकर के लोग सुनेंगे और समझेंगे। किंतु कहेंगे रिफ्रेश होने के लिए कोई जल्दी आते हैं, कोई देर से आते हैं। आगे चल करके बहुत जल्दी जल्दी आएंगे। और आगे चल करके तुम लोग बहुत अच्छे वंडर्स देखेंगे। आभु का बहुत प्रभाव देखेंगे। बाकी तुम बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। आर्फन बनकर के लड़ना झगड़ना नहीं है। माया इतनी जबरदस्त है, जो अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों को भी आपस में लड़ाई कराई देती है। दे अभिमान में आकर के लड़ना झगड़ना सिखलाई देती है। तो फिर आपस में ही लून पानी हो पड़ते हैं। मारती बच्चों की तो अच्छी रीत माया ख्याल काल उतारती है। ऐसे मत समझो कि हम तो बहुत होशियार हैं। समझ लेना चाहिए कि बहुत होशियार कोई माया पछाड़ती है। देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाते। नहीं तो ऐसे मीठे मीठे बाप को तो भूलना नहीं चाहिए। स्त्री पति को भूलती है क्या? पति मर जाता है तो उनके शरीर को याद करती है। ये तो बेहद का बात तुमको पढ़ाए गए। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, फिर भी तुम मुझसे मुझे याद नहीं करते हो। माया भुला करके कोई ना कोई उल्टा काम करा देती। चूहे की मिसल माया ऐसा काटती है जो पता भी नहीं पड़ता है। इसलिए बाप फिर भी कहते रहते हैं अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो औरों को भी कल्याण करते रहो। बाप का पैगाम दे, दैवी गुण धारण कराओ। परंतु ड्रामा अपने अनुसार देखा जाता है कि बच्चों को कम पद ही पाना है। तो बाप भी क्या कर सकते हैं? कल्प कल्प नहीं पढ़े हैं तो अभी भी नहीं पढ़ेंगे। सिद्ध हो जाता है कि ये आगे कल्प में भी नहीं पढ़े। इनकी चलन ही ऐसी है। नाम रूप देश काल चलन सब जीव की त्यों है, जैसी कल्प पहले थी। कल्प कल्प का पुराना स्वभाव है और कल्प कल्प ऐसे ही चलती रहे। अच्छा ओम शांति। अगला छोटा सा आदमी क्लास से 7-12 रूहानी बच्चे बाप के सामने बैठे। है तो बल जिस्म के साथ, परंतु जानते हैं हम बाप के सामने बैठे हैं। क्या मतलब? जिस्म के साथ ही सामने बैठा जाता है या बिना जिस्म के भी सामने हो सकते हैं? है जिस्म माने शरीर, भूत प्रेतों को शरीर तो नहीं देखने में आता है, परंतु वो भी सन्मुख और विमुख होते हैं। जो सन्मुख होते हैं वो फरिश्ते कहे जाते हैं, आत्मिक स्थिति है तो जरूर सन्मुख है। देवान की स्थिति है तो जरूर विमुख है। नहीं तो बुद्धि में आना चाहिए ये हमारा वेद का बाप है। हर 5-4 वर्ष के बाद बाबा आकर के पावन बना करके पावन विश्व का मालिक बनाते। बच्चे समझेंगे अब हमारा 84 जन्म पूरा हुआ, अभी हम घर जावेंगे और तुम बच्चे भी पार्ट बजाते बजाते अब थक गए हो, अभी फिर बाबा आया हुआ है ले जाने के लिए। जानते हो वाया शांति धाम सुख धाम ले जाएंगे। तो बहुत सहज बात बाप समझाते हैं। कलयुग मान ही दुख धाम, और सतयुग मान ही सुख धाम। कलयुग है झूठ खंड, झूठ खंड में दुखी योग। सतयुग है सच खंड, सच्चाई होगी तो सुख जरूर होगा। सच्चाई में ही सत्व प्रधानता होती है। तो बातें तो बहुत सहज बाप बतलाते हैं। अभी बाप आए हैं सुखधाम ले जाने के लिए, और ये भी जानते हैं पवित्र बनकर के ही जावेंगे। सुखधाम और शांति धाम में अपवित्र आत्मा तो कोई होगी नहीं। बच्चे भी रूहानी है बाप भी रूहानी, और ये ज्ञान ही स्पिरिचुअल रूहानी है। बोलो, हमारा फिजिकल फादर नहीं है, हम स्पिरिचुअल बाप के बच्चे हैं। हमारा स्पिरिचुअल फादर है, और ये स्पिरिचुअल चिल्ड्रंस का फादर इस सृष्टि पर एक बार आते हैं, बार बार नहीं आते। जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, संभवामि युगे युगे, हर युग में थोड़े ही आते हैं। ये संगम युग है, यही कल्याणकारी युग है। जहां कलयुग बदल करके दुखधाम बदल करके सुखधाम बनता है, ये पुरुषोत्तम युग है, पुरुषों को उत्तम से उत्तम पाठधारी बनाने वाला युग है। तुम बच्चे 84 जन्म में जो पाठ बजाते हो, जो 84 शरीर धारण किए उनमें सबसे उत्तम पाठ तुम यहां बजाते हो। और ये पाठ भी भारत में ही होता है, ये संगम युग भी भारत में ही होता है और दुनिया में नहीं गाया जाता, भारत में ही गाया जाता है। इस पुरुषोत्तम युग में पुरुष अर्थात आत्मा को उत्तम से उत्तम पाठधारी बनाया जाता है। अभी तो हम सब हैं कनिष्ठ, नीच पाठ कहेंगे, कहते हैं ना उत्तम मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम है सतयुग, मध्यम है द्वापर और कनिष्ठ युग है कलयुग। उत्तम के उत्तम पार्ट भी तुम यहां संगम पर बजाते हो। और कनिष्ठते कनिष्ठ पार्ट भी तुम यहां संगम पर बजाते हो। कनिष्ठ और उत्तम का संगम है। इसलिए बाप कहते हैं अच्छे से अच्छे देखना हो तो यहां देखो और बुरे से बुरे देखना हो तो यहां देखो। अभी तुम्हारी बुद्धि में तो बैठा है कि हम पुरुषोत्तम बनने वाले हैं, कनिष्ठ ही फिर उत्तम बनेंगे। नर से नारायण बनेंगे, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, दोनों ही उत्तम बनते हैं। फिर गिरते हैं तो दोनों ही गिरते हैं। तो बाप नई नई बातें सुनाते रहते हैं। ये ज्ञान सिर्फ बाप ही आकर के देते हैं। इसको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है और ज्ञान भी तब मिलता है जब मनुष्य घोर अंधेरे में आ जाते हैं। कितनी सहज बातें हैं। ब्राह्मणियों का काम है रोज तुमको नई नई बातें सुनाना, रोज बाप के बताए हुए पॉइंट्स बताना। इस संगम युग को बहुत महत्व दिया जाता है। संगम में ही स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ स्पिरिचुअल फादर ही देते हैं और हम हैं उनके स्पिरिचुअल चिल्ड्रेंस। स्पिरिचुअल फादर हम चिल्ड्रेंस को स्पिरिचुअल नॉलेज देते और सतो प्रधान बनाने की युक्ति बताते। पहले पहले ये शिक्षा देनी है कि तुम आत्मा हो, फिर बताना है आत्माओं का बाप है शिव बाबा, वो तो सदा ही पवित्र रहते हैं, आत्माएं पवित्र भी बनती हैं या पवित्र भी बनती हैं? सतोपदान सतो रजो तमो में आती है। कहेंगे गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, इस दुनिया कोई इन चार अवस्थाओं से पसार होना होता है। तो दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है। जैसा सोना होता है वैसा जेवर बनता है। खाद डालने से ही ऐसी चीज बन जाती है। कहेंगे माया की प्रवेशता हो जाती है। फिर लास्ट में बाप आते हैं पुरुषोत्तम संगम पर। इसको कुंभ का मेला कहा जाता है। कुंभ कलश को कहते हैं। ये ज्ञान का कलश है ना। अभी तुम बच्चों को सभी मालूम हुआ है कि बाप कैसे आकर के माताओं को कलश देते हैं। आगे तो कुछ भी नहीं जानते। पूरे ही बंदर बुद्धि थे। फिर संगम पर बाप ने आकर के मनुष्य बुद्धि बनाई है। मनुष्य बुद्धि तब बनती है जब तुम ब्राह्मण बनते हो। फिर तुम मनुष्य को देवता बनाते हो। तुम पढ़ करके देवता बनते हो। समझाने कितनी सहज। और ये बात पक्की पक्की समझानी है कि स्पिरिचुअल नॉलेज स्पिरिचुअल फादर में ही हो सकती है। सत्य के आदि मध्यंत को वो ही जानते हैं। क्यों जानते हैं?
जन्म चक्र में नहीं आते हैं।
क्योंकि वो जन्म मन के चक्र में नहीं आते हैं। और आत्माएं तो सब जन्म मरण के चक्र में आती है। तो पूर्व जन्म का भूल जाते हैं। अभी तुम ये बातें पढ़ करके देवता बनते हो। वो मनुष्य तो नेत नेत कहते आए। मनुष्यों का ड्रामा के आदि मध्यंत को न जाने तो वो क्या काम की रहे। वो समझाया है कि हरेक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक का पार्ट न मिले दूसरे से। हर जन्म में हरेक का पार्ट अलग अलग। हरेक के फीचर्स अलग अलग। फीचर्स बदलते जाते हैं और पार्ट भी बदलते जाते हैं। आत्मा कितनी छोटी है। कितना पार्ट बजाती है। इस छोटी सी आत्मा में इतना सारा पार्ट भरा हुआ है। तो समझा जाता है कि आत्मा भी वंडरफुल है तो आत्माओं का बाप भी वंडरफुल है। ये सारी सृष्टि कैसे वृद्धि को पाती है ये सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं। जो अंदर बाहर सात दिन बच्चे होंगे उनके ज्ञान का तीर बहुत अच्छा लगेगा। परंतु सभी तो ऐसे नहीं होते। बाबा कभी नहीं कहेंगे कि उनका अंदर बाहर साफ दिल है, परंतु बाबा किसी के सामने नहीं कहेंगे। जानते हैं कि तमोप्रधान बच्चे हैं तो डिसर्विस कर देंगे और ही बिगड़ जाएंगे। तो बाप को तो बहुत बहुत प्यार करना होगा। ये दिलवाड़ा मंदिर भी यादगार बना हुआ है। एक एक बच्चे की दिल लेने वाला बाप है और साथ में ये भी बैठा हुआ है। तो ये बाप और ये दादा दोनों इकट्ठे होकर के दिल लेते हैं। ये तुमको मशीन मिलती है श्रृंगार करने के लिए, वो सरस्वती थी, ये ब्रह्मपुत्री है, कौन थी सरस्वती? वो सरस्वती थी, पास्ट को याद किया, किसको याद किया पास्ट में? तब की मुरली है 68 में, कोई पास्ट में पार्ट बजाने वाले पार्टधारी को याद किया? वो सरस्वती थी, कब तक थी? अरे थर्टी, हाँ 65 में शरीर छोड़ा ओम राजे सरस्वती ने, तो याद किया वो सरस्वती थी, ये ब्रह्मपुत्री है। कौन? अरे ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ते हैं तो रंगमंच पर दूसरी आत्मा आती आ जाती है प्रतिनिधित्व करने के लिए। ऐसे ही मम्मा शरीर छोड़ती है तो ब्राह्मणों की दुनिया में प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई दूसरी आत्मा आ जाती है। इसकी ओर इशारा किया। संख्याचक में गुजरात का पहला पालड़ी सेंटर स्थापन हुआ था, एक ही सेंटर था जो ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ की धन संपत्ति लगा करके खुलवाया। मानव के राजा विक्रमादित्य के द्वारा सोमनाथ मंदिर की स्थापना हो गई, जिस सोमनाथ के लिए बोला है, सोमनाथ के साथ सोमनाथनी भी जरूर होगी। तो सोमनाथनी का पाठ बजाने वाली पार्वती माता के लिए ये बोला, ये ब्रह्मपुत्री भी है, वो सरस्वती थी। आप बताओ दोनों में बड़ा कौन? है सरस्वती नदी बड़ी, या ब्रह्मपुत्री बड़ी नदी, सरस्वती तो अलाहाबाद में ही लोप हो जाती है और वैसे भी देखने में नहीं आती, मध्य में आती है, मध्य में ही चली जाती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी तो ज्ञान मानसरोवर से निकलती है, आज से ही निकली थी और अंत तक पार्ट बजाती है। तो बोला गंगा सागर का मेला गाया हुआ है, परंतु गंगा और सागर का मेल होता है या ब्रह्मपुत्र सागर का मेल होता है? ब्रह्मपुत्र नदी सागर में मिलती है, गंगा आकर के पहले ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तो ब्रह्मपुत्री और सागर का मेला गाया जाना चाहिए। परंतु ज्ञान गंगाओं का गायन है, ब्रह्मपुत्र में बड़े बड़े स्टीमर्स आते हैं, सबसे बड़े स्टीमर का नाम क्या बताया? मुरली में कोई स्टीमर का नाम बताया है? चंद्रकांत, वेदांत, इनका संगम पर बहुत मेला लगता है। तो ये बहुत बड़ी से बड़ी नदी है, ये है सर्व की सदगति करने वाले शिव बाबा का स्थान। सार तीर्थों में महान तीर्थ है, थोड़े ही समय में आबू का बहुत नाम हो जाएगा। ये गंगा सागर को आबू से कैसे मिलाई दिया है? सागर में जब ये नदियां जाकर गिरती हैं, तो ढेर सारा कचरा इकट्ठा होकर इन नदियों में जाता है, उस कचरे को ही बू कहा गया है, जो सागर से जाकर मेल खाता है। वो है हद का कचरा, ये है बेहद आत्माओं की बात, जो ऊंचते ऊंच पार्ट बजाती हैं और नीचते नीच पार्ट भी बजाती है। ये बेहद का आबू तीर्थ है, सभी धर्मों का तीर्थ है, ऐसे नहीं। सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों का तीर्थ है, क्योंकि यहां तो सभी की सदगति होती है। अखबारों आदि में आबाद हो जाएगा। अभी तो आबू का इतना नाम नहीं है, नीचे अंबा का मंदिर है, वहां देखो कितने जाते हैं। यहां तो फिर मम्मा और बाबा दोनों हैं, अंबा पर बहुत मेला लगता है। लक्ष्मी पर मेले नहीं लगते हैं, और लक्ष्मी को तो तिजोरी में रखा जाता है। समझते हैं इनको तिजोरी में रखेंगे तो धन बहुत वृद्धि को पाएगा। सेफ्टी में रखा जाता है। अम्मा की इतनी सेफ्टी नहीं होती है और लक्ष्मी की बहुत सेफ्टी करते हैं। वास्तव में किस बात की सेफ्टी है? विदेशों में कन्याओं माताओं की इतनी सेफ्टी नहीं करते हैं और भारत में कन्याओं माताओं की बहुत सेफ्टी करते हैं। वास्तव में ये पवित्रता की सेफ्टी की बात है। भारत सबसे पवित्र देश है। भारत माता का बहुत मान है। परंतु मेले जगदम्बा के बहुत लगते हैं। भारत छोटा देश है और जगत है, जगत तो बहुत विशाल है। सब धर्म वाले मिलकर के जिस स्थान पर इकट्ठे होते हैं संसार में, उसे जगत कहा जाता है। वो है जगदम्बा और वो है भारत माता। भारत माता की यादगार है कन्याकुमारी और जगदम्बा की यादगार है अगर कुमारी। दीपमाला पर सफाई याद से मंदिर में जावेंगे। वहां जाकर के पैसा मांगेंगे। वो भक्ति मार्ग की बातें हैं। यहां कौन से पैसे की बात है? यहां है ज्ञान धन की बात। जरूर जगदम्बा ने वो ज्ञान धन नहीं बांटा होगा जिससे भारत स्वर्ग बन जाता है। वो ज्ञान का कलश लक्ष्मी को दिया जाता है। ज्ञान की खुद धारणा करेंगे तो औरों को भी करा सकेंगे। अभी बाप के पास आकर के बच्चे तृप्त हुए। आत्मा 21 जन्म के लिए तृप्त हो जाती है। सतयुग में तुम जन्म बाई जन्म आत्मा बनकर के रहते हो। त्रेता में भी अपन को आत्मा समझते हो तो आधा कल्प तुम आत्माभिमानी रहते हो और आधा कल्प देह भान में आते हो। ये सुख और दुख का खेल है। आधा समय सुख और आधा समय दुख। ओम शांति।